का था, रूह वही, रूप नया।
खौफनाक इमारत के भाग चार में आपने सुना कि इमरान को आखिरकार पता चल ही गया कि राबिया चमड़े के जैकेट वाले एक नौजवान से छुप छुप कर खौफनाक इमारत के अंदर मिला करती थी, लेकिन चाबी हासिल कर लेने के बाद वो नौजवान राबिया से फिर कभी नहीं मिला। रास्ते में इत्तेफाक से राबिया और इमरान ने उस नौजवान को देख लिया और उसके बाद इमरान ने उस नौजवान का पीछा किया। उसके बाद इमरान को पता चला कि इस गिरोह में उसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिर भी उस गिरोह का बरामद हुई लाशों से क्या वास्ता है ये इमरान अभी तक पता नहीं लगा पाया। आखिरकार इन गुत्थियों को कैसे सुलझाया जाए, सुनिए भाग पांच में। दूसरी सुबह कैप्टन फयाज के लिए एक नया सरदर्द लेकर आई। हालात ही ऐसे थे कि सीधे सीधे उसे ही इस मामले में उलझना पड़ा, वरना पहले तो मामला सिविल पुलिस के हाथों में जाता। बात यह है कि इस खौफनाक इमारत से तकरीबन एक या डेढ़ फरलांग के फासले पर एक नौजवान की लाश पाई गई, जिसके जिस्म पर कत्थई पतलून और चमड़े की जैकेट थी। कैप्टन फयाज ने इमरान की हिदायत के मुताबिक पिछली रात को फिर इमारत की निगरानी के लिए कांस्टेबलों का एक दस्ता तैनात कर दिया था। उनकी रिपोर्ट थी कि रात को कोई इमारत के करीब नहीं आया और ना ही उन्होंने आसपास में किसी किस्म की कोई आवाज ही सुनी, लेकिन फिर इमारत से थोड़े फासले पर सुबह को ये लाश पाई गई। जब कैप्टन फयाज को लाश की खबर मिली तो उसने सोचना शुरू किया कि इमरान ने इमारत के गिर्द हथियार सहित पहरा बिठाने का प्रस्ताव क्यों पेश किया था। उसने वहां पहुंचकर लाश का मुआयना किया। किसी ने मकतूल की दाहिनी कनपटी पर गोली मारी थी। कांस्टेबलों ने बताया कि उन्होंने पिछली रात फायर की आवाज भी नहीं सुनी थी। कैप्टन फयाज वहां से बौखलाया हुआ इमरान के घर की तरफ चल दिया। उसकी तबीयत बुरी तरह झल्लाई हुई थी। वो सोच रहा था कि इमरान ने कोई ढंग की बात करने की बजाय मीर और गालिब के ऊट पटांग शेर सुनाने शुरू कर दिए तो क्या होगा। कभी कभी उसकी बेतुकी बातों पर उसका दिल चाहता है कि उसे गोली मार दे, मगर फिर शोहरत का क्या होता। उसकी सारी शोहरत इमरान के दम से ही तो थी, वो उसके लिए अब तक कई पेचीदा मसले सुलझा चुका था। बहरहाल काम इमरान करता था और अखबारों में नाम फयाज का छपता था। यही वजह थी कि उसे इमरान का सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। इमरान उसे घर पर ही मिल गया, लेकिन अजीब हालत में। वो अपने नौकर सुलेमान के सर में कंघा कर रहा था और साथ ही साथ किसी दूरदर्शी माँ के अंदाज में उसे नसीहतें भी किए जा रहा था। जैसे ही फयाज कमरे में दाखिल हुआ, इमरान ने सुलेमान की पीठ पर घूंसा जड़कर कहा, अबे तूने बताया क्यों नहीं कि सुबह हो गई। सुलेमान हंसता हुआ भाग गया। इमरान तुम कब आदमी बनोगे यार, फयाज एक सोफे पर गिरता हुआ बोला। आदमी बनने में मुझे कोई फायदा तो नजर नहीं आता, अलबत्ता मैं थानेदार बनना जरूर पसंद करूंगा। अरे तुम मेरी तरफ से जहन्नुम में जाना पसंद करो, लेकिन ये बताओ कि तुमने पिछली रात को उस इमारत पर पहरा क्यों लगवाया था।
मुझे कुछ याद नहीं,
इमरान मायूसी से सिर हिलाकर बोला। क्या वाकई मैंने ऐसी कोई हरकत की थी। इमरान, फयाज ने बिगड़ कर कहा, अगर मैं आइंदा तुमसे कोई मदद लूं तो मुझ पर हजार बार लानत। हजार कम है, कुछ और आगे बढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूंगा, इमरान संजीदगी से बोला। फयाज की बर्दाश्त करने की ताकत जवाब दे गई। वो गरज कर बोला, जानते हो आज सुबह वहां से एक फरलांग के फासले पर एक लाश मिली है। अरे तौबा 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 खुदाया, इमरान अपना मुंह पीटने लगा। कैप्टन फयाज कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रखकर न जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर और बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने उसकी दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी है, मैं नहीं समझ सकता कि यह हरकत किसकी है। इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है, इमरान बड़बड़ाया और फिर संजीदगी से बोला, पहरा था वहां।
हाँ था, मैंने ही रात में ये काम निपटाया था। पहरे वालों की रिपोर्ट? कुछ भी नहीं, उन्होंने फायर की आवाज तक नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी। अरे नहीं, लेकिन मैं उसकी लाश की बात कर रहा था। किए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालों के जवाब भी दिए जाओ। कब्र के मुजाविर की क्या खबर है? वो अभी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए मुझे तंग मत करो। अच्छा, तो अली इमरान MSc PhD कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम आखिर उस खपती के पीछे क्यों पड़ गए हो? खैर, जाने दो, और अब मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। क्या बताऊं? बता तो चुका हूं, सूरत से बुरा आदमी नहीं मालूम होता। खूबसूरत और जवान, जिस्म पर चमड़े की जैकेट और कत्थई रंग की पतलून। क्या? इमरान चौंक पड़ा और चंद लम्हे अपने होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सिकोड़े। फयाज की तरफ देखता रहा, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोला, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अरे यार क्या बकवास है, फयाज झुंझला कर बोला, अव्वल तो तुम्हें शेर ठीक से याद नहीं है, और फिर यहाँ अब उसका मौका क्या है? इमरान, मेरा बस चले मैं तुम्हें गोली मार दूं। क्यों, शेर में क्या गलती है? मुझे शायरी में दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे दोनों मिसरे बेरब्त मालूम हैं। लाहौल बिला कुवत, मैं भी उन्हीं बेकार बातों में उलझ गया। खुदा के लिए काम की बातें करें, तुम न जाने क्या कर रहे हो। मैं आज रात को काम की बात करूंगा और तुम मेरे साथ होगे। लेकिन एक सेकंड के लिए भी वहां से पहरा ना हटने पाए। तुम्हारे एक आदमी को हर वक्त मुजाविर के कमरे में मौजूद रहना चाहिए। बस अब जाओ, मैं चाय पी चुका हूं, वरना तुम्हारी खातिर कॉफी से करता। हाँ, एक आंख वाली महबूबा को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि काले मुंह वाले दुश्मन का सफाया हो गया है और बाकी सब खैरियत है। इमरान, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अभी और इसी वक्त सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा तो सुनो, लेडी जहांगीर बेवा होने वाली है, उसके बाद तुम कोशिश करोगे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए। क्या समझे इमरान? फयाज यकायक मार बैठने के हद तक संजीदा हो गया। यस बॉस, बकवास बंद कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगा वरना। भला वो किस तरह सुपर फयाज? निहायत आसानी से, फयाज सिगरेट सुलगा कर बोला, तुम्हारे घर वालों को शक है कि तुम अपना वक्त आवारगी और अय्याशी में गुजारते हो, लेकिन किसी के पास उसका ठोस सबूत नहीं है। मैं सबूत मुहैया करवा दूंगा। एक ऐसी औरत का इंतजाम कर लेना, मेरे लिए मुश्किल ना होगा, जो सीधे तुम्हारी अम्मा बी के पास पहुंचकर अपने लुटने की दास्तान बयान कर दे। ओह, इमरान ने दुख के अंदाज में अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा बी की जूतियां तो ऑल प्रूफ हैं। खैर सुपर फयाज, ये भी करके देख लो, तुम मुझे सब्र और शुक्र करने वाला बेटा पाओगे। लो च्युइंगम शौक करो, इस घर में ठिकाना नहीं होगा तुम्हारा, समझे? फयाज बोला। तुम्हारा घर तो मौजूद है ही, इमरान ने कहा, तो तुम नहीं बताओगे? जाहिर है। अच्छा तो अब तुम इन मामलों में दखल नहीं दोगे, मैं खुद ही देख लूंगा, फयाज उठता हुआ खुश्क लहजे में बोला, और अगर तुम उसके बाद भी अपनी टांग अड़ाते रहे तो मैं तुम्हें कानूनी गिरफ्त में ले लूंगा, समझे? ये गिरफ्त टांगों में होगी या गर्दन में? इमरान ने संजीदगी से पूछा। चंद लम्हे फयाज को घूरता रहा और फिर बोला, ठहरो। फयाज रुक कर उसे बेबसी से देखने लगा। इमरान ने अलमारी खोलकर चमड़े का वही बैग निकाला जिसे वो कुछ अजनबी लोगों के बीच से पिछली रात को उड़ा लाया था। उसने हैंडबैग खोलकर चंद कागजात निकाले और फयाज की तरफ बढ़ा दिए। फयाज ने जैसे ही एक कागज की तह खोली, वो एकदम से उछल पड़ा। अब वो तेजी से दूसरे कागजात पर भी नजरें दौड़ा रहा था। ये तुम्हें कहां मिले? फयाज लगभग हांफता हुआ बोला, उत्साह से उसके हाथ कांप रहे थे। एक रद्दी बेचने वाले की दुकान पर, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, दो आना शेर के हिसाब से। इमरान, खुदा के लिए यार, फयाज थूक निगल कर बोला, अरे क्या कर सकता है बेचारा इमरान, वो अपनी टांगे अड़ाने लगा तो तुम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लोगे ना। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, प्यारे इमरान खुदा के लिए संजीदा हो जाओ यार, मैं इतना संजीदा हूं कि तुम मुझे बीपी की टॉफियां खिला सकते हो। ये कागजात तुम्हें कहां से मिले? सड़क पर पड़े मिले, और अब मैंने इन्हें कानून के हाथों में पहुंचा दिया है। अब कानून का काम है कि वो ऐसे हाथ तलाश करे जिनमें हथकड़ियां लगा सके। इमरान ने अपनी टांग हटा ली है। फयाज बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन इसे सुन लो कानून के फरिश्ते भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। इमरान कहकहा लगा कर बोला, अरे अच्छा तो यही बता दो कि इन मामलों से इन कागजात का क्या ताल्लुक? फयाज ने पूछा। अरे ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। इमरान अचानक संजीदा हो गया। इतना मैं जानता हूं कि ये कागजात फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका इन बदमाशों के पास होना क्या मानी रखता है? किन बदमाशों के पास? फयाज चौंक कर बोला, वही उस इमारत में। मेरे खुदा, लेकिन तुम्हारे हाथ ये लगे किस तरह? फयाज बेचैनी से बड़बड़ाने लगा। इमरान ने पिछली रात की घटना सुना दी। फयाज बेचैनी से टहलता रहा। कभी कभी वो रुक कर इमरान को घूरने लगता। इमरान अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने कहा, अफसोस, तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हें मुझे कल ही इत्तला देनी चाहिए थी। अरे तो अब तो इत्तला दे रहा हूं, उस मकान का पता भी बता दिया, जो कुछ बन पड़े तो कर लो, इमरान ने कहा। अब मैं क्या वहां खाक फांकने जाऊंगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, बुराई ही क्या है। जानते हो ये कागजात कैसे हैं? फयाज ने कहा, अच्छे खासे हैं, रद्दी के भाव बिक सकते हैं। अच्छा तो मैं चला। फयाज कागज समेट कर चमड़े के बैग में रखता हुआ बोला, क्या इन्हें इसी तरह ले जाओगे? नहीं ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे कातिलों का भी फिर तो सुराग लगाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। क्यों? फोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। अरे कल रात से वे लोग मेरी तलाश में हैं, मैं रात भर घर से बाहर ही रहा हूं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मकान की निगरानी जरूर हो रही होगी। खैर अब तुम मुझे बता सकते हो कि कागजात कैसे हैं? फयाज फिर बैठ गया। वो अपनी पेशानी से पसीना पोंछ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7 साल पहले इन कागजात पर डाका पड़ा था, लेकिन इनमें सब नहीं है। फॉरेन ऑफिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर उन्हें लेकर सफर कर रहा था। ये नहीं बता सकता कि वो कहां और किस मकसद से जा रहा था, क्योंकि हुकूमत का राज है। ऑफिसर खत्म कर दिया गया था। उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उसके साथ सीक्रेट सर्विस का भी एक आदमी था। उसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका, शायद वो भी मार डाला गया हो, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। आहा, तब तो ये बहुत बड़ा खेल है, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन मैं जल्द ही उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब क्या करोगे तुम? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और सुनो, इन कागजात को भी अपने पास ही दबाए रहो, और हैंडबैग मेरे पास रहने दो। मगर नहीं, उसे भी ले जाओ। मेरे जहन में कई तदबीरें हैं, और हाँ, इस इमारत के इर्द गिर्द दिन रात पहरा रहना चाहिए। आखिर क्यों? वहां मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा, इसलिए, इमरान झुंझला कर बोला। फयाज उठकर पुलिस की कार मंगवाने के लिए फोन करने लगा। उसी रात को इमरान बौखलाया हुआ फयाज के घर पहुंचा। फयाज सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर अगर इमरान के बजाय कोई और होता तो वो बड़ी बदतमीजी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में गुप्तचर विभाग एक अरसे से सिर मार रहा था। फयाज ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवा ली। मैं सिर्फ एक ही बात पूछने आया हूं, इमरान ने जल्दी से कहा। क्या बात है, कहो। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फयाज का दिल चाहा कि उसका सिर दीवार से टकरा कर सचमुच उसको कब्र तक जाने का मौका मुहैया करवा दे। वो कुछ कहने की बजाय इमरान को घूरता रहा। ओहो, तुम तो खामोश हो गए। इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला, मैं समझा तुम्हें शायद किसी और से प्यार हो गया है।
इमरान के बच्चे?
रहमान के बच्चे। इमरान ने जल्दी से उसकी गलती सुधारी। अरे तुम क्यों मेरी जिंदगी तलख किए हुए हो इमरान। ओहो, क्या तुम्हारी मादा दूसरे कमरे में सोई है? इमरान ने चारों तरफ देखकर बोला।
अरे बकवास मत करो, इस वक्त क्यों आए हो?
एक इश्किया खत दिखाने के लिए, इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला। उसके शौहर नहीं है, सिर्फ बाप है। फयाज ने उसके हाथ में से लिफाफा लेकर झल्लाहट से फाड़ना चाहा।
हाँ हाँ, अरे पहले पढ़ो तो मेरी जॉन, मजा ना आए तो डाक खर्च खरीदार के जिम्मे,
इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। फयाज ने बेदिली से खत निकाला और फिर जैसे ही उसकी नजरें उस पर पड़ी, खिन्नता के सारे भाव उसके चेहरे से गायब हो गए और उसकी जगह अचरज ने ले ली। इमरान, अगर वो चमड़े का हैंडबैग या उसके अंदर की कोई चीज पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। उसे वापस कर दो, बेहतरी इसमें है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात जरूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्स के करीब मिलो। हैंडबैग तुम्हारे साथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5,000 आदमी भी ले आओगे तब भी गोली तुम्हारे सीने पर ही पड़ेगी।
फयाज खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा।
लाओ, इसे वापस कर रहा हूं, इमरान ने कहा।
अरे पागल हो गए हो?
हाँ।
तुम डर गए हो, फयाज हंसने लगा।
अरे मेरा हार्ट फेल होते होते बचा,
इमरान नाक से बोला। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास?
रिवॉल्वर?
इमरान अपने कानों में उंगलियां ठूंसते हुए बोला। अरे बाप रे, अरे बाप रे।
अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस हासिल कर लूंगा।
अरे बस करम करो, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। उसमें आवाज भी होती है और धुआं भी निकलता है, मेरा दिल बहुत कमजोर है। लाओ हैंडबैग वापस कर दो।
अरे क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो?
अच्छा तो तुम नहीं दोगे?
इमरान आंखें निकाल कर बोला।
फिजूल की बातें मत करो, अब जाओ यहां से, मुझे नींद आ रही है।
अरे ओ फयाज, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूंगा।
हैंडबैग तुम्हारे वालिद के ऑफिस भेज दिया गया है।
तब उन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि
अरे जाओ यार, खुदा के लिए मुझे सोने दो।
11 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला।
अच्छा चलो तुम भी यहीं सो जाओ, फयाज ने बेबसी से कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा,
उस इमारत के आसपास भी पहरा है?
हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं।
लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो?
अफसर मुझसे उसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ।
अच्छा तो उठो, ये खेल भी इसी वक्त खत्म कर दें। 30 मिनट में हम वहां पहुंचेंगे, बाकी बचे 20 मिनट। 11:15 तक सब कुछ हो जाना चाहिए।
क्या हो जाना चाहिए?
11:30 बताऊंगा, उठो। मैं इस वक्त तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ते हुए देख रहा हूँ।
अरे आखिर क्यों, कोई खास बात है क्या?
अली इमरान MSc PhD कभी कोई आम बात नहीं करता, समझे? नाउ गेट अप। फयाज ने बेमन से कपड़े बदले।
थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से उस देहाती इलाके की तरफ जा रही थी जहां इमारत थी। वे इमारत के करीब पहुंच गए। इमरान ने फयाज से कहा,
तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस वक्त तक कब्र के मुजाविर को बातों में उलझाए रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, समझे? उसके कमरे में जाओ और 1 सेकंड के लिए भी उसका साथ मत छोड़ना।
इमारत के गिर्द हथियार बंद पहरा था। दस्ते के इंचार्ज ने फयाज को पहचान कर सैल्यूट किया। फयाज ने उससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मुजाविर के कमरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और मुजाविर शायद समाधि में बैठा था। फयाज की आहट पाकर उसने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह दहक रही थीं।
क्या है?
उसने चिल्लाए और झल्लाए लहजे में कहा।
कुछ नहीं, मैं देखने आया था कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, फयाज बोला।
मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है।
किन गधों की तरह?
वही जो समझते हैं कि शहीद मर्द की कब्र में खजाना है।
कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ रोजाना लाशें बरामद होती रहें। अगर जरूरत समझी तो कब्र भी खुदवाई जाएगी। फयाज ने कहा,
भस्म हो जाओगे, खून थूकोगे, मरोगे,
मुजाविर गरज कर बोला। क्या सचमुच इसमें खजाना है? इस पर मुजाविर फिर गरजने लगा। फयाज बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए 15 मिनट हो चुके थे। वो मुजाविर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। मुजाविर उछल कर मुड़ा। उसकी पीठ की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खाली स्थान नजर आ रहा था। फयाज बौखला कर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि यकायक दीवार को क्या हो गया। वो उससे पहले भी कई बार उस कमरे में आ जा चुका था, लेकिन उसे भूलकर भी ये ख्याल नहीं आया था कि यहां कोई चोर दरवाजा भी हो सकता है। अचानक मुजाविर चीख मारकर उस दरवाजे में घुसता चला गया। फयाज बुरी तरह बौखला गया था। उसने जेब से टॉर्च निकाली और वो भी उसी दरवाजे में दाखिल हो गया। यहां चारों तरफ अंधेरा था। शायद वो किसी तहखाने में चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सीढ़ियां नजर आईं। यहां कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। फयाज सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और जब ऊपर पहुंचा तो उसने खुद को मुर्शिद मर्द की कब्र से निकलते हुए पाया, जिसका पत्थर किसी संदूक के ढक्कन की तरह सीधा उठा हुआ था। टॉर्च की रोशनी का दायरा सहन में चारों तरफ गर्दिश कर रहा था। फिर फयाज ने मुजाविर को वारदातों वाले कमरे से निकलते हुए देखा।
तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया,
वो फयाज को देखकर चीखा।
आओ अपनी करतूत देख लो।
वो फिर से कमरे में घुस गया। फयाज तेजी से उसकी तरफ झपटा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। यहां का बहुत सारा प्लास्टर उधड़ा हुआ था और उसी जगह 5-5 इंच के फासले पर 3 बड़ी छुरियां गड़ी हुई थी। फयाज आगे बढ़ा। उधड़े हुए प्लास्टर के पीछे एक बड़ा सा खाना था और उन छुरियों के दूसरे सिरे इसी में गायब हो गए थे। इन छुरियों के अलावा इस खाने में कुछ और नहीं था। मुजाविर खा जाने वाली नजरों से फयाज को घूर रहा था। ये सब क्या है? फयाज ने मुजाविर को घूरते हुए कहा। मुजाविर ने इस तरह खंखार कर गला साफ किया जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उम्मीद के खिलाफ उसने फयाज के सीने पर एक जोरदार टक्कर मारी और उछल कर भागा। फयाज चारों खाने चित हो गया। संभलने से पहले उसका दाहिना हाथ होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल चुका था, मगर बेकार। मुजाविर ने कब्र में छलांग लगा दी थी। फयाज उठकर कब्र की तरफ दौड़ा, लेकिन मुजाविर के कमरे में पहुंचकर भी उसका निशान न मिला। फयाज इमारत से बाहर निकल आया। ड्यूटी कांस्टेबल बदस्तूर अपनी ही जगहों पर खड़े थे। उन्होंने भी किसी को भागते हुए नहीं देखा था। उनका ख्याल था कि कोई इमारत से बाहर निकला ही नहीं। अचानक उसे इमरान का ख्याल आया। आखिर वो कहां गया था? कहीं ये उसी की हरकत ना हो। इस खुफिया खाने में क्या चीज हो सकती है? अब सारे मामले फयाज के जहन में साफ हो गए थे। लाश का राज, 3 जख्म जिनके बीच का फासला 5-5 इंच का था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फयाज चौंक कर मुड़ा। इमरान खड़ा बुरी तरह उसे बिसूर रहा था।
ओह, तो ये तुम थे?
फयाज उसे नीचे से ऊपर तक घूरता हुआ बोला।
मैं था नहीं बल्कि हूं, और उम्मीद है कि अभी 2-4 दिन और जिंदा रहूंगा।
वहां से तुमने क्या निकाला?
अरे बड़ी चोट हो गई प्यारे,
इमरान भर्राई हुई आवाज में बोला।
वो मुझसे पहले ही हाथ साफ कर गए।
मैंने तो बस बाद में जरा इस खुफिया खाने के मैकेनिज्म पर गौर करना चाहा था कि एक खटके को हाथ लगाते ही कब्र तड़क गई।
अरे लेकिन वहां था क्या?
वो बाकी के कागजात जो चमड़े के उस बैग में नहीं थे।
क्या?
अरे ओ अहमक, पहले क्यों नहीं बताया?
फयाज अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला।
लेकिन वो अंदर घुसे किस तरह?
आओ मेरे साथ, दिखाऊं, इमरान एक तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो फयाज को इमारत के पश्चिमी कोने की तरफ लाया। यहां दीवार से मिली हुई आदम कद झाड़ियां थीं। इमरान ने झाड़ियां हटाकर टॉर्च रोशन की और फयाज का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। दीवार में इतनी बड़ी सेंध थी कि एक आदमी बैठकर आसानी से इससे गुजर सकता था।
ये तो बहुत बुरा हुआ,
फयाज बड़बड़ाया। और वो पहुंचा हुआ फकीर कहाँ है, इमरान ने पूछा।
वो भी निकल गया।
लेकिन तुम किस तरह अंदर पहुंचे थे?
उसी रास्ते से। आज ही मुझे इन झाड़ियों का ख्याल आया था।
अब क्या करोगे? बाकी कागजात?
फयाज ने बेबसी से कहा।
बाकी कागजात भी उन्हें वापस कर दूंगा। भला आधे कागजात किस काम के?
जिसके पास भी रहें भाई पूरे तो रहें।
उसके बाद मैं बाकी जिंदगी गुजारने के लिए कब्र अपने नाम अलॉट करवा लूंगा।
इमरान के कमरे में फोन की घंटी बड़ी देर से बज रही थी। वो करीब ही बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। उसने घंटी की तरफ ध्यान तक न दिया। फिर आखिर घंटी जब बजती ही चली गई तो वो किताब मेज पर पटक कर अपने नौकर सुलेमान को पुकारने लगा।
जी सरकार।
सुलेमान कमरे में दाखिल होकर बोला,
अबे देख कौन उल्लू का पट्टा ये घंटी बजा रहा है।
सरकार फोन है।
फोन?
इमरान चौंक कर फोन की तरफ देखता हुआ बोला,
इसे उठाकर सड़क पर फेंक दे।
सुलेमान ने रिसीवर उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, इमरान माउथ पीस में बोला।
हाँ हाँ इमरान, नहीं तो क्या कोई कुत्ता भौंक रहा है?
तुम कल रात रेस कोर्स के करीब क्यों नहीं मिले? दूसरी तरफ से आवाज आई।
भाग जाओ गधे।
इमरान ने माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर सुलेमान से कहा।
क्या कहा?
दूसरी तरफ गुर्राहट सुनाई दी।
नहीं नहीं, वो तो मैंने सुलेमान से कहा था, मेरा नौकर है। हाँ तो आप क्या बता सकते हैं कि मैं पिछली रात रेस कोर्स में क्यों नहीं गया? बताइए।
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।
अच्छा तो सुनो मेरे दोस्त, इमरान ने कहा, मैंने इतनी मेहनत मुफ्त नहीं की है। हैंडबैग की कीमत 10,000 लग चली है। अगर तुम कुछ बढ़ो तो मैं सौदा करने को तैयार हूँ।
शामत आ गई है तुम्हारी।
हाँ मिली थी।
अरे मुझे बहुत पसंद भी आई,
इमरान ने आंख मार कर कहा।
आज रात और इंतजार किया जाएगा, उसके बाद कल किसी वक्त तुम्हारी लाश शहर के किसी गटर में बह रही होगी।
अरे बाप रे, तुमने अच्छा किया कि बता दिया। अब मैं कफन साथ लिए बगैर घर से ना निकलूंगा। ना
देखो फिर भी समझाता हूँ,
दूसरी तरफ से आवाज आई।
समझ गया,
इमरान ने बड़ी विनम्रता से कहा और फोन काट दिया। उसने फिर किताब उठा ली और उसी तरह मशगूल हो गया जैसे कोई बात ही ना हुई हो। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया और झल्लाई हुई आवाज में बोला,
अब मैं ये टेलीफोन किसी यतीम खाने को प्रेजेंट कर दूंगा, समझे? मैं बहुत ही मकबूल आदमी हूँ।
क्या कहा मैंने? मैंने मकबूल कहा?
अरे मकबूल नहीं, मशगूल आदमी हूँ।
तुमने अभी किसी रकम की बात की थी? दूसरी तरफ से आवाज आई।
कलम नहीं फाउंटेन पेन,
इमरान ने कहा।
वक्त बर्बाद मत करो,
दूसरी तरफ से झल्लाई हुई आवाज आई।
हम भी उसकी कीमत 10,000 लगाते हैं।
वेरी गुड, इमरान बोला। चलो तो ये तय रहा, अब बैग तुम्हें मिल जाएगा
आज रात को।
क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो?
इमरान ने पूछा।
उसी तरह जैसे पहली उंगली दूसरी उंगली को जानती है।
गुड,
इमरान चुटकी बजा कर बोला। तो तब तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं।
तुम?
हाँ मैं। रेस कोर्स बड़ी सुनसान जगह है। अगर बैग लेकर तुमने मुझे ठाए कर दिया तो फिर मैं किससे फरियाद करूंगा?
ऐसा नहीं होगा,
दूसरी तरफ से आवाज आई।
मैं बताऊं, तुम अपने किसी आदमी को रुपए देकर टिप टॉप नाइट क्लब में भेज दो।
मैं मधुबाला की जवानी की कसम खाकर कहता हूं कि वापस कर दूंगा तुम्हारा बैग।
अगर कोई शरारत हुई
तो मुझे मुर्गा बना देना।
अच्छा, लेकिन ये याद रहे कि तुम वहां रिवॉल्वर की नाल पर रहोगे।
अरे फिक्र ना करो, अरे मैंने तो आज तक रिवॉल्वर की शक्ल तक नहीं देखी।
इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और जेब से च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। क्या वाकई इमरान ने वो बैग एक बेवकूफ की तरह उस आदमी को लौटा दिया? क्यों बुलाया उसे टिप टॉप क्लब? क्या है इसके पीछे का राज? और ऐसी कौन सी तरकीब इमरान के दिमाग में चल रही है? ये सारे राज पता करने के लिए सुनिए भाग 6।